न्यूज एंड व्यूज की एक और दस्तक, जहां केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि होगी आपके मन की बात। हम और आप मिलकर करेंगे एक नया आगाज, तो बस जुड़े रहिए हमारे साथ। एनवी रेडियो है आपके साथ।
नमस्कार, मैं हूं आशीष दवे। कार्यक्रम क्या सोचते हैं आप में हम बात करेंगे घटना और उन घटनाक्रमों के बारे में जो दिनों दिन न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 48 घंटों तक सुर्खियां बनी रही हो, साथ ही साथ इन्हीं खबरों से हर छोटे बड़े अखबार भी पटे रहे और एक दिन एकाएक सारी खबरें गायब। क्या होती होंगी इनके पीछे मीडिया की रणनीति या रसूखदारों की राजनीति? मीडिया में आने से या फिर कहले इन खबरों की लुका छिपी से आखिर किसको, क्यों और कैसे होता होगा फायदा, या फिर कहें वो मुद्दे जो नजर आते होंगे सबको किसी भी मीडिया के अलावा और रह जाती होंगी उनकी कसक आपके जहन में। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम बोलना क्या चाह रहे हैं, तो चलिए इसी विषय से जुड़ी एक ताजा घटना याद दिलाते हैं। व्यापम घोटाला। इस मुद्दे के खुलासे के शुरुआती दौर से लेकर कुछ माह पहले तक मामले की हर खबर सुर्खियां बनी रही। हर छोटी से छोटी बात और तहकीकात को काफी डिटेल में बताने की कोशिश होती थी हर मीडिया की। खास तौर पर कोई रसूखदार के वारंट का मामला हो तो फिर तो मीडिया ट्रायल के साथ साथ उसकी सर्च ट्रैकिंग भी शुरू हो जाती थी। अब सब कुछ याद आ गया होगा आपको, है ना? खैर, इसी सिलसिले में आज की बात की जाए। प्रदेश के नामी गिरामी हस्ती डॉक्टर अजय गोयनका, जैसे कई और मेडिकल कॉलेजों के मालिकों और उनके मातहत जिनके कंधों पर रखकर घोटालों को अंजाम दिया गया था, जिसका खामियाजा कई मासूमों ने अपनी जान देकर उठाया, तो किसी ने सलाखों के पीछे, तो किसी नौजवान का पूरा भविष्य ही दांव पर लग गया। खैर, अब पूरी पिक्चर क्लियर हो गई होगी आपके जहन में। क्या आपने कभी किसी मीडिया में पढ़ाया देखा है? कहां है आखिर वो पूरे प्रकरण के अहम किरदार और उनके मातहत? हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को कितनी सफलता मिल पाई उन्हें ढूंढने में, और उन्हें ढूंढ निकालने में आखिर किस बात का और किसको है इंतजार? आखिर चिरायु अस्पताल हो या दूसरे दोषी मेडिकल कॉलेज, कैसे चल रहे हैं उतनी ही शिद्दत और शान से? उन मालिकों के बगैर वो कौन सी बाधा है जिसकी वजह से कानून के शिकंजे से बचे रहे हैं वो सब जो हो सकते हैं सबसे बड़े घोटाले के बड़े दोषी? क्यों नहीं रही ये खबरें मीडिया की सुर्खियों में? डॉक्टर अजय गोयन का फरार, क्या होगा उनकी गिरफ्तारी के बाद? क्या है उन पर आरोप? क्यों नहीं हो रही बुद्धिजीवियों के मध्य डिबेट वगैरह वगैरह? खैर, इतना आसान होता तो शायद 2000 गिरफ्तारियों में सबसे पहली गिरफ्तारी उन्हीं की होती, है ना? बहरहाल, जब तक चाहा तब तक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी दो वहां से ज्यादा समय बाद भी उन्हें नहीं ढूंढ पाई, और जब सब कुछ मुनासिब लगने लगा तब उन्होंने खुद सरेंडर कर दिया और कोर्ट में कहा मुझे समन नहीं मिला। गंभीर आरोप है सीबीआई पर, है ना? कितनी बड़ी बात है। क्या सोचते हैं आप, इन लगभग 2.5 माह में मीडिया ने इस गंभीर मामले में क्या अपनी जिम्मेदारी निभाई या फिर? चलिए, इन्हीं तरह के विषयों पर बुद्धिजीवियों से बात करेंगी मेरी सहयोगी सुषमा।
नमस्कार अनुपम जी, मैं सुषमा बात कर रही हूँ न्यूज एंड व्यूज से।
नमस्कार मैम।
और मैं अपने कार्यक्रम क्या सोचते हैं आप में आपसे जानना चाहती हूँ कि आप ऐसे कौन से मुद्दे जानते हैं कि जो मीडिया में सुर्खियां बनी रही और उसके बाद मीडिया से गायब हो गई।
मैडम, सबसे पहला मुद्दा तो ये है, आपको कुछ समय पहले याद रहोगा कि 14 ट्रक भर के हीरे जवाहरात कैश, जिसमें माना गया था कि वो संपत्ति जो है करीब करीब 1400 करोड़ की है,
हाँ,
खबरों में शायद 24 घंटे 48 घंटे छाया रहा।
हाँ।
पूरी मीडिया में बात हुई उसकी। उसके बाद वो ट्रक भी गायब हो गए, पैसे भी गायब हो गए, उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसकी दौलत थी, कहाँ गई, वो रद्दी में कन्वर्ट हो गया, उसका हुआ क्या, ये आज तक किसी को मालूम नहीं पड़ा।
अच्छा,
ऐसा वो अकेला मुद्दा नहीं है, ऐसे बहुत से मुद्दे हमारे सामने आते हैं, ऐसे बहुत से हमारे सामने भ्रष्टाचार के मुद्दे सामने आते हैं, जो कुछ समय तक तो हम देखते हैं कि वो हर अखबार, हर टीवी चैनल, हर जगह पर, चाहे वो सोशल मीडिया हो, रहते हैं, उसके बाद वो ऐसे बुझ जाते हैं जैसे कि वो शायद मुद्दा कभी रहा ही ना हो।
अच्छा, ऐसा कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा हो जिसको आपने देखा हो और उसके बाद आपने उसकी कोई कंप्लेंट की हो?
आपने बात की है तो आपको याद दिलाऊं कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन है कपिल शर्मा।
हाँ।
सभी लोग जानते हैं उनको। उन्होंने एक बड़ी छोटी सी कंप्लेंट की थी बीएमसी के अगेंस्ट, मुंबई में उन्होंने एक ट्वीट किया था प्रधानमंत्री मोदी जी को कि नक्शा पास करने के लिए बीएमसी में तरह तरह के उनसे फेवर्स मांगे जा रहे हैं। फेवर्स क्या मांगे जा रहे हैं, सीधी सीधी घूस मांगी जा रही है। अब देखिए उसके बाद हुआ क्या, उसके ऑफिस को तोड़ दिया गया, उनको वो परमिशन तो मिलने के दूर, जो उनका बना हुआ स्ट्रक्चर था उस पे तमाम आपत्तियां बीएमसी ने लगाई, और ये कंप्लेंट करने का नतीजा था कि उस पे सरकार तो चुप रही, मोदी जी स्वयं चुप रहे, और उस उलट कोई कार्रवाई बीएमसी के होने पर वो तो कपिल शर्मा जी पर हुई। अब कपिल शर्मा जैसा जो आदमी, जिसको आप, हम सभी लोग, पूरा हिंदुस्तान जानता है, उसकी स्थिति ऐसी है, तो हम तो देश के आम नागरिक हैं, हमारी स्थिति क्या होगी कंप्लेंट करने पे। आपको मैं एक और मुद्दा याद दिलाता हूँ, आज खबरें देखिए किस प्रकार की चलती है। आज खबरों में क्या चल रहा है, आज खबरों में चल रहा है पद्मावत। देश का कौन सा, मेरे को एक बात बताइए, देश का कौन सा परेशानी का समाधान पद्मावत के रिलीज होने या ना होने से होगा? इस प्रकार की खबरें आप देखिए, देश का ध्यान किसी एक अच्छी खबर से भटकाने के लिए आप इस तरह की खबरें चलाएंगे और 24 घंटे चलाएंगे तो जो ध्यान है आपका डेफिनेटली ना विकास की तरफ ध्यान रहेगा, ना रोड की तरफ ध्यान रहेगा, ना पानी की तरफ ध्यान रहेगा, ना बिजली की तरफ ध्यान रहेगा, ना गांव की तरफ ध्यान रहेगा, ना फार्मर्स की आज प्लाइट देखिए उसकी तरफ ध्यान रहेगा। आपका ध्यान कहाँ जा रहा है? आपका ध्यान पद्मावत पे जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया और जौहर एक एक सही प्रथा थी या नहीं थी? ये कोई डिस्कशन करने वाले मुद्दे हैं आज देश में?
तो धन्यवाद अनुपम जी आपका एनवी रेडियो से बात करने के लिए।
आपका धन्यवाद, और मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ इस प्रकार का कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए, और मैं आपकी सफलता की कामना करता हूँ, प्रभु से अपेक्षा करता हूँ कि आप।
अनुपम जी ने बात तो की है लगभग 4 साल पुरानी दबी जुबान में, लेकिन है बहुत बड़ी। 14 ट्रक गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर पर पकड़ाए थे, जिसमें बड़ी मात्रा में बेशकीमती पत्थर और हीरे जवाहरात के साथ साथ कैश भी बरामद हुआ था। दूसरी बात जिसमें कॉमेडियन कपिल शर्मा को कंप्लेंट करने के बाद ऐसी मुंह की खानी पड़ी थी, जिसका दर्द उनकी बॉडी लैंग्वेज में साफ साफ झलक रहा था। तीसरी बात, फिल्म पद्मावत और तिरंगे के जरिए आज के परिवेश में राजनीति और देश के विकास का विश्लेषण किया। चलिए सुनते हैं सुषमा जी अब किनसे बात करने जा रही हैं।
एंड्रू जी नमस्कार, मैं सुषमा बात कर रही हूँ न्यूज एंड व्यूज से। आपसे जानना चाहती हूँ कि आप ऐसे कौन से मुद्दे जो मीडिया में आते ही नहीं हैं।
अभी मुद्दा ये आया था कि डॉक्टर केवल जेनरिक दवाइयाँ लिखेंगे, ब्रांडेड दवाइयाँ नहीं लिखेंगे, और वो नियम को इन्फोर्स भी किया गया था जहाँ तक मैं समझता हूँ, और वो नियम आज भी लागू है। लेकिन सारे निजी अस्पताल जो है, कई अस्पतालों का सिस्टम ये है कि वो तो दवा लिखते ही नहीं है, सीधे दवाई स्टोर से आपके पास में आ जाती है, आपको बिल मिलता है, आप वो दवा बाहर से नहीं ला सकते, और जो दवाएं वो लिखते हैं वो बाहर मिलती भी नहीं है उसका। चलो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उस दवा में कई दवाएं ऐसी हैं जो शायद हकीकत में 200 रुपए की हो, लेकिन वो अस्पताल अपने काउंटर से अपने लिए स्पेशल तरीके से बनवा के 2-2, 2500 रुपए की बेचते हैं। तो एक आम आदमी की उसमें कमर टूट जाती है। तो बहुत गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए कोई सरकारी सहायता कोष बना हुआ जिसके माध्यम से प्राइवेट अस्पतालों को पेमेंट हो जाता है, और जिसमें शायद 1 करोड़ रुपए का पेमेंट निजी अस्पतालों को सरकार के माध्यम से हर साल होता है। लेकिन एक आम आदमी जो उस चीज के लिए क्वालिफाई नहीं करता, उसका इतना भयानक शोषण होता है कि वो शायद हिल जाता है बुरी तरीके से उन अस्पतालों का खर्चा उठा के। और दूसरा जो जेनरिक दवा का किस्सा है उसको बिल्कुल सख्ती के साथ लागू किया जाना जरूरी है, वरना ये प्राइवेट अस्पताल वाले आधी जान तो परिवार वालों की वैसे ही ले लेते हैं दवाओं के नाम पे। एक दिन का खर्चा एक अस्पताल का 1-1 लाख रुपए मैंने स्वयं भरा है सिर्फ दवाइयों के नाम पे।
जान है तो जान है भैया, ये ख्याल रखिएगा, चाहे खुद की हो या अपनों की, और खास तौर पर जब अपनों की जान पर बनाती है तो हर शख्स हैसियत से ज्यादा अच्छे इलाज के लिए पैसे बहा देता है। मैं भी एंड्रयू त्यागी जी से व्यक्तिगत परिचित हूँ, इन्होंने अपनी माताजी को नेशनल हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। मैं जब उनसे मिलने जाया करता था तब उनकी माँ के ठीक न होने और हॉस्पिटल के बिल का बेहिसाब बढ़ने का दर्द उनके नजदीक से मैंने देखा था, और चंद दिनों बाद ही वो स्वर्ग से धर गए। न्यूज एंड व्यूज की पूरी टीम की ओर से उन्हें अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि। हमारी अगली बातचीत हो रही है नवनीत गर्ग से, जो कि बैतूल से हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो स्वच्छता अभियान को लेकर राष्ट्रव्यापी अभियान चला रहे हैं, बैतूल नगर पालिका ने भी स्वच्छता अभियान के नाम पर करोड़ों लाखों रुपए के ठेके दिए, और ठेकों में भी फर्जीवाड़ा हुआ, कामों में भी फर्जीवाड़ा हुआ, भुगतान में भी फर्जीवाड़ा हुआ। ऐसे ही कुओं की सफाई नगर पालिका ने करवाई, 1,72,000 में 1 कुआं साफ हुए, जबकि सरकार कपिल धारा योजना में 1,20,000 में नए कुएं बना के दे देती है। ये जितने भी ठेके नगर पालिका ने स्वच्छता की ग्रेड के लिए सर्वे टीम तक के आने तक ये सफाई के कार्य हुए और सर्वे टीम चली गई, वैसे ये कार्य बंद हो गए क्योंकि इसमें बहुत अनियमितताएं थी, इसलिए इनको ये कार्य भी बंद कर दिया। और इनको ऐसा लग रहा था कि अब हमारी तो रैंकिंग हो गई है, जो भी रैंक मिलेगी इनको सफाई से मतलब नहीं, रैंक से मतलब था।
और भी आगे हम बात करेंगे,
जरूर जरूर,
ओके, धन्यवाद।
इन्होंने बहुत कम शब्दों में दो बड़ी बात की। नगर निगम हर छोटे बड़े नागरिक से टैक्स वसूलता है, और उस टैक्स का पलीता सफाई के नाम पर कैसे लगाया जा रहा है ये आपने अभी सुना। खैर, अब हम बात करने जा रहे हैं रैना जी से। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वो मीडिया और राजनीति के समन्वय की जरूर बात करेंगे।
मुद्दे तो बहुत सारे हैं जो आजकल कुछ चंद सेकंड्स के लिए चलते हैं टीआरपी हासिल करने के लिए, और उसके बाद जो है वो बंद हो जाते हैं। डिपेंड करता है कि सत्ता के साथ कितने पत्रकार जुड़े हुए हैं और कितने उसके विरोध में हैं। तो अक्सर जो है जो सुर्खियों में जितनी भी न्यूज आती है वो सारी की सारी न्यूज जो होती है आजकल प्रायोजित रहती है। अगर उसमें सत्ता का कहीं पे दखलंदाजी होती है या फिर इंटरेस्ट होता है तब वो न्यूज बनी रहती हैं। न्यूज तो बेसिकली वही होनी चाहिए जो तात्कालिक रहती हैं और जनता से जुड़ी हुई होती हैं, परंतु जो निरंतर न्यूज चलती जाती हैं और ज्यादा जनता का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती हैं वो हमेशा प्रायोजित न्यूज रहती हैं। अगर हम लेटेस्ट अगर सोचें, एक कांग्रेस के एक नेता हैं, उनके संदर्भ में चल रहा था और उसके अंदर पीड़िता ने जो है पीड़िता को ही अपराधी साबित करने के लिए प्रशासन ने उसे जेल भिजवा दिया। ऐसे मुद्दे जो होते हैं पहले दिन की सुर्खियां लेते हैं और दूसरे दिन गायब हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर सत्ता और विपक्ष दोनों मिले हुए रहते हैं। पीड़िता के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, पीड़िता जेल में है। ये यही साबित करता है कि मीडिया भी उन्हीं चीजों के अंदर इंटरेस्ट लेता है जिसके अंदर उनको प्रेरित किया जाता है इंटरेस्ट लेने के लिए। इसीलिए मीडिया की प्रासंगिकता जो है धीमे धीमे, विश्वसनीयता जो है कम हो रही है।
रैना जी ने जो बयां किया वो घटना कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे के साथ छात्र द्वारा किए गए ब्लैकमेलिंग के आरोप के संबंध में थी। बहरहाल मामला अपने आप में है तो बड़ा, लेकिन सुनने में हम सबको मामूली सा लग रहा है, क्योंकि इस तरह की साजिश राजनेताओं द्वारा फिल्मों में हम सभी सालों से देखते चले आ रहे हैं। चलिए अब हम चलते हैं देश की राजधानी की तरफ, जानते हैं हमारी सहपाठी और सहयोगी अभय मिश्रा से।
मीडिया की ये बहुत कमी है कि खबरों में जो फॉलो अप होना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं होता। दिल्ली में मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर एक उन्मादी भीड़ ने एक दुकान को जला दिया तो उसके बाद उस पर मीडिया कवरेज हुई और उसको तुरंत ही हिंदू मुस्लिम टेंशन का रूप देने की कोशिश हुई और दो दिन तीन दिन तक उस पर हंगामा मचता रहा और फिर जब राजनीतिक पार्टियों का उद्देश्य पूरा हो गया तो उसके बाद वो खबर मीडिया से भी गायब हो गई। हमने एक पल भी नहीं सोचा कि जिस गरीब की दुकान को आग लगा दिया गया क्या उसे न्याय मिल पाया इस समाज में, क्या सरकार ने कानून ने ऐसे कदम उठाए कि उससे उसके अंदर एक सुरक्षा की भावना आ पाए, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो। तो ये स्थितियां जहां मैं रहता हूँ वही नहीं, पूरे देश में आप देखेंगे कमोवेश सारी जगह यही नजर आता है। लेकिन मैं एक चीज और बताऊं कि बहुत से विषय ऐसे हैं जिन पर मीडिया का ध्यान नहीं जाता। आप फॉर एग्जांपल आप पर्यावरण को लीजिए, एनवायरमेंट को हमेशा से मीडिया में इस तरह से शामिल किया जाता है जैसे कि फिलर स्टोरी, यानी कि कोई अखबार है, अखबार में थोड़ी सी जगह रह गई और कुछ खबर नहीं मिल पा रही है ठीक ठाक, तो वो एक पर्यावरण की खबर लगा देंगे। जबकि होना ये चाहिए कि पर्यावरण को हमेशा से मुख्य खबरों के तौर पर शामिल किया जाना चाहिए, क्यों वास्तव में समाज को सरकार को ये समझने की जरूरत है कि जब पृथ्वी ही नहीं रहेगी, जल जंगल जमीन ही नहीं रहेगा, तो हमारे रहने नहीं रहने का कोई मतलब नहीं है। तो पर्यावरण जैसे विषय को जो है छोड़ दिया जाता है, जो जो बड़ा बड़ा एक तरह से तकलीफ देता है और उसका कारण यह है कि वो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकता, उसमें मल्टीनेशनल कंपनियों का सीधे सीधे कोई हित नहीं है, इसलिए ऐसी खबरें छूटती हैं।
उम्मीद है अभय जी की बात से आप भी सहमत होंगे। न्यूज एंड व्यूज का रेडियो के क्षेत्र में पहला प्रयास है, आशा है आप हमें सुझाव देंगे ताकि हम कार्यक्रम को और पैना बना सकें। आप भी अपने विचार हम तक पहुंचा सकते हैं हर गुरुवार और सोमवार सुबह 11 बजे से 1 बजे तक। हमारा संपर्क नंबर है 07552579850, पता है न्यूज एंड व्यूज 232 जोन 1 एमपी नगर भोपाल। अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।